ओम शांति। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में स्व के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के महान कार्य में अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले विशेष जिम्मेवार आत्मा बाबा के अनन्य रतन हमारे आदरणीय योगी भाई जी आज इस सभा में हम सभी के सम्मुख पधारे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस सृष्टि चक्र के अंदर परमात्मा अवतरण के गुप्त स्वरूप को जानना, पहचानना, उस पर विश्वास करना और उसी विश्वास और दृढ़ता के साथ उसकी श्रीमत पर चलना, यह एक विशेष महान आत्मा का महान लक्षण है, विशेष खूबी है। तो आप एक ऐसी महान आत्मा हैं जो कि आपको परमात्मा पहचान प्राप्त होते ही आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। परिवार और समाज से आने वाली हर चुनौती का, हर समस्या का सामना करते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। आप पिछले 40 वर्षों से इस आध्यात्मिक पथ के राही हैं, पथिक हैं। आपने लंबे समय तक दिल्ली पांडव भवन में अपनी सेवाएं दी। वर्तमान समय आप पांडव भवन मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक हर्षित मुख मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। अपने हर्षित मुख स्वभाव से हर एक आत्मा के दिल को आप जीत लेते हैं। आप ऑलराउंडर सेवादारी हैं। हर प्रकार की सेवा में आपकी विशेष रुचि रहती है। तो आज आप हम सभी एक ऐसी विशेष आत्मा से मुलाकात करने जा रहे हैं जो अपने आप में अनेक विशेषताओं से सुशोभित हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय योगी भाई जी, जिन्होंने अपने इस अलौकिक जीवन में अनेक प्रकार के अलौकिक खजानों को एकत्रित किया हुआ है, उन खजानों से हम सभी को भी लाभान्वित करने का आप अवश्य हमें प्रेरित करेंगे। आदरणीय योगी भाई जी,
शांति। पहला प्रश्न वही है जो होता है, आपको किस आयु में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ?
ओम शांति। ज्ञान प्राप्त हुआ 17 साल की आयु में कलकत्ता में, जब हम 18 जनवरी को शोभा यात्रा वहां निकला हुआ था तो हमने कलकत्ता से ज्ञान लिया।
कौन सी आयु में प्राप्त, अपना कौन से सन में?
सन 1970 में।
तो कैसे प्राप्त हुआ?
हम वहां पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे तो सुबह यात्रा बहुत विशाल रूप से निकलता था वहाँ पर। हमारे रमेश भाई और पुष्पा बहन थी जो बहुत अनन्य रतन थे, सेवा में बहुत उनका रुचि था, तो बहुत धूमधाम से ही शोभा यात्रा निकालते थे। तो उस समय ऐसे हम बीच बीच में आते जाते थे लेकिन सेंटर पर नहीं जाते थे। तो हमारी परम आदरणीय अमृतसर की जो शीला बहन थी वो मेरे को बार बार बुलाती थी और मैं जाता था वहां देख के आ जाता था, लेकिन वो शीला दीदी मेरे को ऐसे ही बुलाती रहती। फिर ज्ञान लेने के बाद में 7 दिन का कोर्स किया, उसमें हमारी 3 दिन की सतपति बहन जी कोर्स कराई, 1 दिन की हमारी शशि बहन जी कोर्स कराई जो यहाँ मधुबन में प्रेजेंट है। और मधु बहन पटना की थी, वो 2 दिन कोर्स कराई। तो कोर्स के थोड़े दिन के बाद ही समझिए कि 3-4 दिन बीता होगा तो हमको सेवा मिल गया बर्तन मांजने की, क्योंकि वहां पर एक हरि भाई नाम का व्यक्ति था जो काम करता था, लेकिन जब वो अचानक चला गया तो मेरे को बोला गया कि आप सेवा करेंगे। हमने कहा कि जी हाँ करेंगे। तो बोला कि भाई बर्तन साफ करना है। हमने कहा ठीक है मैं बर्तन साफ कर दूंगा। तो बर्तन साफ माना बर्तन तो बहुत होता था क्योंकि ब्रह्मा भोजन होता था। एक बार बर्तन साफ किया तो फिर मैं 2-3 दिन तक आया नहीं। फिर हमारी परम आदरणीय निर्मल संता दीदी मुझे ऊपर बुलवाई और निर्मल संता दीदी ने मुझे सारा स्पष्ट करके सारी बात बताई कि कैसे बाबा हम लोगों को सेवा देते थे, कैसे हम बर्तन में घुस करके बर्तन को साफ करते थे। तो जैसे जैसे मेरे को दीदी बोलती थी वैसे वैसे हम करते थे। तो दीदी ने हमको छोटरू नाम रखी थी। छोटरू मन छोटे थे हम, वहाँ हम सबसे पीछे बैठते थे क्योंकि मेरे को बार बार बुलावा आता था। मीरा बहन जी कलकत्ता में ही रहती थी उस समय, इनको गर्म पानी देना पड़ता था बाथरूम में। तो दूसरा कोई जाता नहीं था तो बोले नहीं आप जाओ। तो हम उनको गर्म पानी दे करके बाल्टी में दे करके आते थे। फिर कोई और सेवा होता था तो बोलते थे ये करो वो करो, तो हम ना नहीं करते थे। मैं कहा दादी ने निर्मल संत दादी की इतनी विशेषता थी जो मैं शब्दों में वर्णन नहीं करना कर सकता, क्योंकि जब दीदी मेरे को ब्रह्मा बाबा के विषय में जब बता रही थी तो दीदी को हमने प्रत्यक्ष रूप में जो देखा वो था कि ब्रह्मा बाबा और दीदी ने लाइट के में दिखाई दी। तो उस समय मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ कि भाई ये रियल में बाबा इनके साथ कार्य करा रहा है। फिर उसके बाद हम सन 1970 से सन 1973 तक हम कलकत्ता में रहे। फिर उसके बाद सन 73 में रामलीला मैदान में मेला लगा हुआ था तो दीदी जी ने ही मेरे को बोली कि आपको दिल्ली चलना है सेवा के लिए। दिल्ली में भी आए तो वही बर्तन मांजने की ड्यूटी और बर्तन उठाने की ड्यूटी। 2 महीना हम दिल्ली में रहे, फिर वहां से फिर दिल्ली पांडव भवन जाते थे, रहते थे शक्ति नगर, क्लास करने जाते थे कमला नगर। शक्ति नगर के पास ही है, थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो जो भी सेवा उन्होंने दिया हमने दिल से किया। फिर वहां से हम चले गए कलकत्ता। कलकत्ता में फिर लौकिक वाले ने बहुत जोर डाला, क्योंकि लोगों को छोड़ करके हम चले गए ना, तो आश्रम पर आने लगे, बहुत जबरदस्ती करने लगे। फिर हम भाई के साथ हम चले गए आसाम। भाई हमारा कपड़े का धंधा करता था, तो उनके साथ हम सेवा में सहयोगी बने। कपड़े का रेडीमेड का कारोबार था, तो वहां पर सन 1973 से लास्ट जब 74 होने वाला था, तो मैं फिर लौकिक घर आ गया, मुजफ्फरपुर जो हमारा लौकिक घर पड़ता है। फिर मुजफ्फरपुर में आया तो संदेशी दादी तो मेरे को जानती थी, जैसे ही मेरे को देखी बोली कि वो तुम तो बहुत सेवा करते हो, तुम यहाँ आना, यहीं रहो यहीं रहो। तो संदेशी दादी उस समय कोई ब्राह्मणी नहीं था, संदेशी दादी की सेवा जो भी होता था हम करते थे, माने कपड़ा धुलाई करना, प्रेस करना, बर्तन मांजना, बिस्तर लगाना, मच्छरदानी लगाना, जो भी ब्राह्मणी एक सेवा करती है उस तरह हम करते थे। लेकिन हमने संदेशी दादी की ये विशेषता देखा कि उनके अंदर में बॉडी कॉन्शियस नहीं था, बिल्कुल कोई भान नहीं था कि हम लेडी हैं। कभी भी मैंने उसको दादी जी को देखा, तो हम लोग क्या करते थे उस समय, हम थे, हमारे डॉक्टर बनारसी भाई थे और हमारी संदेशी दादी और रानी दीदी, हम चार लोग ही थे। तो हम लोग खाना बनाते थे, सब इकट्ठे बैठ करके टेबल पर खाते। संदेशी दादी मेरे को अपने हाथ से मेरे को खिलाती थी, मेरे हाथ से अपने थाली से रोटी सेल मनी, वो जो सिंधी रोटी बनाते थे, तो सिंधी रोटी मेरे को हाथ से नहीं, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, मतलब बड़ा प्यार करते थे। तो ऐसे करते फिर संदेशी दादी बोली मेरे साथ कलकत्ता चलो, क्योंकि वहां कलकत्ता में 74 में जो दिल्ली में मेला लगा हुआ था वही कलकत्ता में गया। तो फिर कलकत्ता में उनके साथ रहे, फिर उसके बाद हम लोग की घर आए, फिर लोग की घर से भाई का तबीयत खराब हो गया, फिर मेरे को आसाम जाना पड़ा। फिर वहां गए तो वहां लगभग हम 76 तक, मैंने 75 तक वहां रहे। फिर 75 में लास्ट में हम आए, तो 75 में हम मधुबन आए थे, उस समय हमारा ये मेडिटेशन हॉल लगभग बन करके तैयार हो गया था। तो ऐसे हम आते रहे जाते रहे। फिर इसके बाद भंडारा तो ये बना नहीं था, उधर भंडारा था। तो एक बार हम आटा गूंद रहे थे, तो हमारे आदरणीय गुलजार दादी मुझे देख रही थी छुप करके, मुझे ध्यान ही नहीं कि दादी मुझे देख रही है। तो आपको तो मालूम है, पहले हम बहुत मेहनत लगा करके आटा गूंदते कि रोटी अच्छा बने। तो दादी बड़ा लगन से सेवा कर रहे थे, दादी बोलती थी, दादी चुपचाप देखी। फिर दादी देखी तो मेरा अचानक मेरे को नजर गया, हमने जो कोई मुझे देख रहा है, कुछ ऐसा मेरे को महसूस हुआ। तो दादी को देखा तो उठ करके फटाफट दादी को ओम शांति, दादी मैं क्या सेवा करूँ आपकी। दादी मुझे बोली पक्का सेवा करोगे? मैंने कहा कि जी करूंगा पक्का, तीन बार अंडरलाइन कराई दादी। अच्छा, अब मैं तो चला गया सेवा करके यहां। फिर गुलजार दादी फोन की वहां संदेशी दादी और रानी दीदी को कि ये लड़का मुझे भेज दो आप, ये मुझे चाहिए। अब मेरे को संदेशी दादी रानी दीदी बोली, योगी भाई आपको गुलजार दादी बुला रही है। मैंने कहा कि दीदी मेरे को तो मधुबन में रहना है। तो बोला नहीं, हवा का रथ है, गुलजार दादी बुला रही, मानो भगवान बुला रहा है। तो मैं दिल्ली पांडव में वहां आया सेवा के लिए, तो वहां सेवा में उपस्थित हुआ। सेवा तो आलूंडा दादी मेरे को जो भी बोलती थी मैं करता था, लेकिन एक बार आलूंडा दादी बोलती थी, लाल तुम हाँ कर दो, सिर्फ तुम हाँ कर दो, सेवा अपने आप हो जाएगी। क्योंकि वो जानती थी कि ये हाँ कर दिया माना ये रात को जाग करके भी करेगा, क्योंकि हमारा एक बचपन से है, छोटेपन से, कि यदि मैंने संकल्प कर लिया ना कि मुझे ये कार्य करना है तो मैं रात को जाग करके भी करूंगा, छोड़ूंगा नहीं जब तक पूरा ना हो जाए। तो ऐसे मेरे को दादी बोलती थी। तो सेवा तो वहां भिन्न भिन्न प्रकार के किया। तो सन 1981 में गुलजार दादी ऐसे बहुत मेरे को प्यार करती थी। गुलजार दादी के साथ हम शिमला गए थे, वहां 10 दिन शिमला में रहे। तो शिमला में गुलजार दादी मेरे को अचानक बोली, मेरा नाम ऐसे पहले योगेश्वर के नाम से था, लेकिन दादी बोली कि आपको योगी, दादी उतना योगी नहीं बोलती थी, ऐसे योगेश्वर योगेश्वर करती थी। तो जैसे दादी बोलती थी मैं जी दादी, तो बाबा ने कहा है कि आपको भंडारे का सेवा करना है। मैंने कहा कि ठीक है जिससे आप कहिए, क्योंकि उस समय मैं आटा गूंदने का सेवा करता था, सिक्योरिटी करता था, झाड़ू पोछा मारता था और गार्डन में पानी देता था, क्योंकि उस समय दिल्ली पांडवन बहुत गिने चुने लोग होते थे, उसमें भी फॉरेनर्स आते थे तो उनकी सेवा करना, तो ऐसे पार्ट प्ले करते थे। तो हमने कहा कि दादी भोजन बनाने तो मेरे को आता नहीं है, तो बस आपने हाँ किया ना हो जाएगा। फिर दादी के साथ हम शिमला से आए, फिर किचन में सेवा करने के लिए तो एक बाबा की एक वरदान है कि जो चीज हम बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा ऑटोमेटिक। गुलजार दादी ने ही बोली थी कि देखो बाबा का आपके तरफ से एक वरदान मिला हुआ है कि आप जो भी करोगे वो अच्छा हो जाएगा। तो अब हम खाना बनाने लगे तो टेस्टी बनने लगा। तो अब वहां के लोग मेरे को बहुत चाहने लगे। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि नहीं भाई मेरे को मधुबन में रहना है। तो दादी मेरे को कैसे, मैंने दादी से बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं दादी ने मुझे मधुबन में रहना है। तो दादी बोले कि ठीक है आपको मैं छुट्टी देती हूँ, आप रहो। तो मैं मधुबन में लगभग 1 साल 3 महीना रहा, मुझे लगभग कपड़ा भी मिल गया था। लेकिन जब यहाँ पर पांडव भवन के लोग यहाँ भट्टी करने आए थे, वो यहाँ बैठ गए दिल्ली वाले, बोले कि मुझे भी यहाँ रहना है, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा कि शिव कुमार वगैरह और थे लोग, ये सब बोले मेरे को भी नहीं जाना है। तो अब दादी मेरे को बुलाई, दादी गुलजार थी, दादी प्रकाशमणि मेरे को बुलाई, बोले कि आपको जाना है, ये लोग यहाँ बैठ गए, जाने के लिए तैयार। हमने कहा कि जी दादी जैसे बोलो आप। फिर मैं गया, फिर दादी से रिक्वेस्ट किया, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद फिर आया, फिर दादी बोले कि आपको आप सामान बनाना है तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति को सिखाना पड़ेगा। तो दादी के द्वारा हम मधुबन में ही, गुलजार दादी ने ही मुझे मधुबन में रखी, और परमादरणीय हमारी प्रकाशमणि दादी। तो इसमें मेन था कि ये भगवान भाई था यहाँ पर पहले, तो भगवान भाई को हम अपने साथ लेकर के गए थे और भगवान भाई को वहाँ खाना बनाने की ट्रेनिंग दी। लगभग 3 महीना हम दिल्ली पांडव भवन में रहे और उनको खाना कैसे बनता है, कैसे मसाला डलता है, एक बहुत बड़ा लिस्ट बनाया उसने, कैसे कैसे मसाला डलता है, कैसे बनाना है, कैसे कड़ाही चलाना है, कैसे टोली बनाना है, मतलब 3 महीना तक। फिर उसके बाद हमने दादी को कहा कि दादी अब मुझे जाना है। दादी बोलती नहीं, भगवान भी रहे और आप भी रहो। हमने कहा कि दादी नहीं, अभी मुझे जाना है। अब यहाँ क्या था, उस समय सिंधी आइटम हम बनाते थे, सिंधी खाना। तो सिंधी खाना क्योंकि आलोंडर दादी से हमने हर प्रकार की ट्रेनिंग लिया था, तो आलोंडर दादी हमारे को हर प्रकार की वो सेवा देती थी और हम करते थे। तो सिंधी आइटम मेरे को अच्छा बनाने आता था, तो इसलिए यहाँ पर हांगकांग के हमारे आते थे वो परिवार और लोग आते थे, तो सिंधी खाना। साजन साह का तो बीच में था। ओके, हाँ, इन्होंने बोला तो एक बार क्या है, माताजी की प्रॉब्लम आ गई थी। माताजी की प्रॉब्लम आई तो माताजी ने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है, मुझे यज्ञ में हमको माताजी को देख रेख करना है। दादी जी को तो दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, ये सब बैठे थे और आपस में फिर दादी से हमने बात किया। जो अपना म्यूजियम का दूसरा जो रिसेप्शन है वहाँ पर दादी गुलजार, दादी प्रकाश मणि बैठी। दादी बोली कि आपको यज्ञ से पैसा मिलेगा माँ के लिए, और लोगों को भी देते हैं तो आपको भी देंगे। हमने कहा कि नहीं दादी, मुझे यज्ञ से पैसा नहीं लेना है, मैं यज्ञ से पैसा लेना पसंद नहीं करता हूँ। हमने कहा कि नहीं, जैसा भी है, मैं बाबा का ज्ञान तो छोड़ूंगा नहीं मरते दम तक, क्योंकि मुझे सेवा करनी है। तो हमने वहां से निकल के कपड़े का एक हमारे साजन साहब वहां थे दिल्ली में, तो वहां हम उनके पास कुछ दिनों तक किया और हम पांडव भवन में आते जाते थे, सेवा भी वहीं करते थे। फिर हम श्री फोर्ट में भी, वहां भी सेवा करते थे। अब श्री फोर्ट वाले ने हमारे ऊपर बंधन डाल दिया कि आप तो इतनी अच्छा खाना बनाते हो, अभी यहाँ रहो। अब उन्होंने घड़ी, सॉल, दुनिया भर की आइटम मेरे सामने रख दी। सॉल ले लो, बहुत बढ़िया घड़ी है, आपको घड़ी नहीं है, आप घड़ी ले लो, ये चाहिए ये ले लो। मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई। तो फिर कैसे कैसे करके फिर उनसे रिक्वेस्ट किया और फिर लौकी घर गए, और लौकी घर से फिर हम मधुबन गए। मधुबन से हम फिर मधुबन में आए तो फिर दादी एक बार और बोले कि आपको जाना है। एक सुंदर बात आपको बताना चाहूंगा कि दादी बार बार मेरे को जहां तहां भेजती थी। अहमदाबाद भी गए सेवा के लिए, बम्बे भी गए सेवा के लिए, कलकत्ता भी रहे सेवा के लिए। तो दादी जब मेरे को बोलती थी, जयपुर भी हम सेवा के लिए दादी भेजी थी, तो दादी मेरे को बोली कि अभी आपको मधुबन में तो आपको सेवा अच्छा करते हो, इसलिए आपको बाहर जाना है, फिर आपको दिल्ली जाना है। अब दिल्ली कहाँ जाना है, तो कृष्णनगर जाना है। अभी देखिए, मैं वापस घर से यहाँ आया, दिल्ली पांडवन से नहीं आया, अभी आपको वापस जाना है दिल्ली। मैंने कहा मैं दिल्ली, दादी जी मैं इतने साल से रहा हूँ वहाँ, जैसी भी है खर बड़ों को तो ना नहीं करते हैं। मैंने कहा कि दादी जी यदि ऐसा है ही तो मैं जा करके कुछ कारोबार करूंगा, क्योंकि मेरे को कम धंधा करने तो आता है। मैंने कहा कुछ ना कुछ करूंगा। तो दादी बोली अच्छा अच्छा ठीक है, कमला वहाँ कृष्णा नगर जाओ आप। मैंने कहा ठीक है दादी, आप एक हफ्ते के मोहल्ला दीजिए, क्योंकि दादी जी को हम ना नहीं सामने से कर सकते, दादी बोल रही है ना, तो हमको युक्ति से बात करना पड़ता था दादी जी से। फिर दादी जी को हमने कहा कि आप एक हफ्ते का मोहल्लत दीजिए। फिर मैं 2 बजे रात को उठ करके दादी जी को इमर्ज करके बाबा योग लगाया। सिर्फ मात्र एक हफ्ता था,
एक हफ्ता में मैं 3 दिन योग लगाया, चौथे दिन दादी क्लास में बुला ली। मधुबन वालों का क्लास हो रहा था तो दादी बोली कि योगी भाई अभी आपको दिल्ली नहीं जाना है, अभी आपको मधुबन में ही रहना है, दादी रख रही है आपको, और एक बात है कि इसके पहले आपको जयपुर जाना है। अब जयपुर गए तो जयपुर सुषमा बहन बंदर लाल दी। तो अब वो रतन मोहिनी दाई से बुरी फाइनल हो गया कि नहीं इसको आप रखो। अब मेरे को अंदर में आया कि भाई आपस में तुम मेरे को है ना अपनी ये जो अनिल सुनील भाई, अनिल भाई है क्या, अनिल भाई की माँ देवंती माता वो वहां रहती थी, सेवा करती थी सर। हाँ तो वो मेरे को बोली, वो मेरे को बोली योगी भाई आपके लिए ये लोग चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि क्या चर्चा कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ ही रखेंगे। हमने कहा अच्छा, तो आपने क्या सुना, तो बोला नहीं ये बुरी रतन मोहिनी दादी को सपोर्ट कर रही है, आपस में बात कर रहे थे। मैंने कहा कुछ उपाय उपाय है, मैंने कहा ऐसे करो आप एक इनलाइन लेटर, वो माता जी खुद बोली कि मैं आपको एक इनलाइन लेटर ला करके देती हूँ। मैंने कहा ठीक। मैंने दादी जी को लेटर लिखा, दादी जी अपनी जो हमारी दादी, क्योंकि दादी जी से हमारा, दादी दीदी से हमारा शुरू से गाढ़ा कनेक्शन था। तो दादी जी बोली कि मैसेज भेज दी, रामलोचन भाई गया वहां प्रोग्राम था, तो रामलोचन भाई गया तो बोला कि दादी जी बोली है योगी को बोलना मैं आ रही हूँ और मैं उसको बताऊंगी कैसे जाना है। तो फिर दादी आई, दादी से मिले तो दादी बोली कि देखो अभी प्रोग्राम पूरा होने वाला है, अपनी 51-58 बस जयपुर गई थी, बोले कि आप क्या करना सामान सारा चुपचाप पैक कर लेना, पैक करके गाड़ी में पहले रख लेना किसी को मालूम न पड़े। तो सामान सारा हमने पैक किया तो एक बहन थी, वो बहन देख ली कि ये क्या पैक कर रहा है, तो मैंने कहा कि बहन जी ऐसे ही सामान सेट कर रहा हूँ, कपड़ा अव्यवस्थित हो गया है इसको ठीक ढंग से सेट कर रहा हूँ। तो उनकी नहीं नहीं आप पैक कर रहे हो, मैंने कहा नहीं। तो फटाफट सामान जैसे तैसे था अटैची में डाला, बैग में डाला और डाल करके गाड़ी में फटाफट डाल लिया। अब जा करके सुषमा बहन योग शिविर करा रही थी, बैठी हुई थी, जैसे ही मैंने कहा कि दीदी मैं जा रहा हूँ मधुबन, कोई गलती सलती हो तो माफ करना, ध्यान नहीं रखना, हम सेवाधारी हैं, हम सेवा में हर वक्त उपस्थित रहेंगे, बाकी अभी हमको जाने दीजिए, कोई गलती हो तो माफ करना, ध्यान नहीं रखना। वो योग शिविर करा रही थी, फिर रोने लगी, आंख से आंसू आने लगे उसको, योगी भाई आप जा रहे हो क्या हुआ आपको? हमने कहा कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो आंसू मेरे को भी आ गया, क्योंकि फिर मैं वहां से सामान उमान डाल करके फिर वहां से हम बीकानेर गए, और बीकानेर दादी बोली कि आपको बीकानेर जाना है और बीकानेर से सीधा बस में आप मधुबन आ जाना। फिर मधुबन से फिर कुछ दिनों के बाद फिर अपना वहां गए थे अहमदाबाद, सरला दीदी भी 2 बार मीटिंग की इंद्रप्रस्थ में मेरे लिए। अब मैं आपको बताऊं, हम खाना बना करके चले जाते थे कंकड़िया लेक, क्यों हम जो उन्होंने देते थे सब्जी वगैरह काट करके वो पूरा कंप्लीट करके और फटाफट हम काम भोजन बनाते हैं क्विक सर्विस,
तो हमको वो लोग डेढ़ घंटा दो घंटा लगता था, मेरे को एक घंटा में हो जाता था। तो बोलते थे आप कैसे काम करते हो जो फटाफट हो जाता है, एक डेढ़ घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाता था पूरा। इवन किचन को भी साफ कर देते थे, पूरा मसाला भी सेट कर देते थे और व्यवस्थित रूप से खाना पीना बना के रख के चले जाते। ये लोग क्या करते थे, सब कटोरी में खाना डाल डाल करके अपना अपना थाली में रख देते थे। आते थे तो खाना खुट जाता था। अब वो लोग मेरे को खोजते थे, वो कहाँ चला गया। तो हम तो कंकड़िया लेक चले जाते थे, फिर जब वहां से कैसे कैसे सामान डाल करके भी ट्रक में डाल करके सामान अहमदाबाद से आए। फिर यहाँ सरला दीदी आई, फिर यहाँ थल्ले पर बैठे थे सरला दीदी, दादी, फिर दादी मेरे को अपने बाजू में बैठाई, बोली कि सरला मेरे तरफ से छुट्टी है, आप योगी को ले जाओ। बड़ी बहन जी है, कैसे दादी बोल सकती है उनको। फिर मैंने दादी जी को चुपचाप हाँ किया, क्योंकि दादी जी को सामने नहीं बोल सकते ना कुछ, बड़े हैं ना उनको बोलना। फिर मैंने दादी को चुपके बोला मैं कि दादी आप माँ हैं और माँ को एक बेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं आपसे बात करूंगा। तो दादी मेरे को अपने कमरे में बुलाई, दादी के कमरे में गया तो दादी को सारा बात बताया। तो दादी बोली कि ठीक है। फिर सरला दीदी को बोली कि नहीं अभी योगी से अपना बुद्धि योग आप हटा लो। तो फिर उस समय से हम मधुबन में रहने लगे। हम सन यहाँ से सन 77 में आए थे, और नहीं यहाँ से मैं हाँ सन 77 में, यहाँ से ऐसे तो बाबा से मिलने सन 75 में आए थे, लेकिन दिल्ली पांडव भवन में जो गुलजार दादी बुलाई थी वो सन 77 में, 77 में।
यह रहना कब से, कौन से सन से चालू किया?
मधुबन में हम परमानेंट 86 में आए।
अच्छा, 86 से। अच्छा, आपने अपनी विशेषताएं भी बताई, समर्पित होने का टाइम भी बता दिया आप।
हाँ, एक बहुत सुंदर बात इन्होंने बोला है, इसलिए मैं आपको क्या था, एक हमारा एक छोटू था उड़ीसा से आया हुआ था, तो आलुंडर दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी। आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, बाकी क्या है कि उनकी आलुंडर दादी एक का नाम ही थी और बहुत कम खर्चा करते थे। तो एक भाई था तो उसको फल खाने का इच्छा होता था, तो बोलता था कि योगी भाई मेरे को फल खाने का इच्छा है। हमने कहा दादी बैठी है मांग लो आप। हम लोग तो मांगने नहीं जाते थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या करता था कि वो उसको खाने का इच्छा होता था तो चूहा झाड़ू एक लेता था और फल का एक टोकरी था प्लास्टिक का, उसके ऊपर वो झाड़ू मारता था, बोलता था दादी चूहा चूहा चूहा। तो अब मारिए के ऊपर से झाड़ू मारेगा तो फल में तो लगेगा ना। अब वो क्या है कि वो आलुंडे दादी बोलती थी लाल ले जाओ, ले जाओ बिल्कुल यहाँ दिखाना नहीं। अब मेरे को बोलता था योगी भाई मैं फल लेके आया हूँ। मैंने कहा कि तुम ही खाओ भाई, मेरे को नहीं खाना। आपको एक सुंदर बात और बताना चाहूंगा। हम पहले कोयला तोड़ते थे, राख छानते थे, कोयला तोड़ कर राख जो बचता था वो डब्बा में भर भर करके छान छान करके रखते थे। तो हमारी आदरणीय माताएं सब ले करके जाती थी उसको, तो पूरा हमारा कपड़ा गंदा हो जाता जब कोयला तोड़ता था, तो पूरा काला कपड़ा हो जाता। साबुन हमको खत्म हो जाता था, हमारे पास साबुन लिमिट में आलुंडा दादी देती थी। तो क्या था कि आलुंडा दादी साबुन देती थी तो आधा उनके जो साबुन होता था वो अपने साबुन में से आधा काट करके मेरे को देते थे, लाइफ बॉय साबुन होता था। दूसरी बात, उस साबुन को हम यूज करते थे। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पेस्ट हमारा खत्म हो जाता था तो आलूंडर दादी हमारे से बेलन मंगवाती थी और बेलन लेकर के जाते थे, फिर पेस्ट को वो बेलन से चलाते थे। अब इतना बच जाता था तो बोलती थी लाल ये भी चलेगा कुछ दिन। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा कपड़ा फट जाता था, वो देखती थी कि इसके पास तो टाइम है नहीं, फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है, बोलती थी लाल मेरे को कपड़ा दो मैं सिलाई कर दूंगी। मैंने कहा दादी आपको दिखाई तो देता नहीं, आप कैसे करेंगे? तो नहीं नहीं मैं करूंगी। तो वो बैठ करके बड़े गौर से माने कपड़ा सिलाई करती थी, बोलती थी लाल हो गया। हमने कहा ठीक है दादी जैसे ये आपने, तो वो सिलाई करके दी। हाँ तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो राख छानना एक बार हमने छोड़ दिया तो माताएं सब राख लेकर के जाती थी। मैंने कहा माता जी हम इतना ड्रम राख छान करके रखते हैं, आप लेकर के जाते हो, हमारा कपड़ा खराब हो जाता है, इसमें हम लोगों को आश्रम वालों को क्या फायदा है? तो बोलती है योगी भाई आपको चाहिए क्या? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, हम तो यज्ञ की सेवा कर रहे हैं ना। तो जितना राख ले जाती थी माताएं उसका उतना आटा चावल दाल लेकर के आती थी और वहां थल्ला पर रख दी। योगी भाई मैंने रख दिया है। मैंने कहा क्या रख दिया? तो आटा रख दिया, चावल रख दिया, दाल रख दिया। तो जितना राख ले जाती थी उतना वो चावल आटा रख करके जाती थी और हम फिर उसे खूब धूमधाम से सेवा करने लगे। फिर बड़े बड़े राख का ढेर लगा दिया छान छान कर। हमने कहा कमाई हो रहा है।
आप ड्राइविंग लाइन में फिर कब आए यहाँ ट्रांसपोर्ट में?
हम 1995 में आए। इसके पहले डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन क्या है किचन छोड़ना तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन दादी ने भी दो तीन बार मीटिंग बुलाई, सूरज भाई को बुलाई, भोली दादी को बुलाई इंद्रप्रस्थ में। बोली ये योगी दिखाई नहीं देता, ये कहाँ है? तो सूरज भाई बोला कि वो तो गाड़ी सीख रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो बोले उसको किसने बोला गाड़ी चलाने के लिए? वो तो भोजन बनाता है, भोजन छोड़ करके गाड़ी किसने बताया उसको सीखने के लिए? फिर ऐसे मैं गुप्त गुप्त से, फिर दादी बोली तो मैं फिर किचन में चला गया। लेकिन क्या है कि फिर ज्यादा हमको किचन में दबाव पड़ता था, क्योंकि खाना अभी मान लीजिए कि बैगन का भरता बनाना है तो जब तक अच्छा नहीं बनेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। या मान लीजिए कोई भी चीज है तो हमारा यही नियम है, चाहे कितना भी टाइम लगे। पहले तो हम आपको बताएं हम जाते थे 8:30 बजे और किचन से हम 12:30 बजे निकलते थे। अभी तो किचन में क्या है 1 घंटे की सेवा होती है, पहले बहुत सेवा होता था, झाड़ू पोछा किचन को साफ करना, हम लोग अपने हाथ से किचन साफ करते थे, इवन बर्तन भी साफ करते थे क्योंकि तो ऐसे करते है। फिर 1995 में कैसे हुआ मैं आपको बताया, भाई साहब पूछ रहे हैं इसलिए बताना चाहूंगा कि नागराज भाई ने मेरे को कहा कि योगी भाई आप साइड से सेवा दो, बाकी वो किचन में करते रहना। तो मैं नागराज भाई को सेवा देने लगा, बीच बीच में गाड़ी चलाने लगा। तो दादी को मालूम पड़ा कि भाई ये गाड़ी चला रहा है, तो दादी हमारी लाइसेंस जब्त कर ली, हमारी लाइसेंस जब्त कर ली और मोगा का, राजेंद्र मोगा, ये दोनों को आपको मालूम होगा बस। हाँ तो उस समय
गाड़ी तो उन्होंने चलाई, ये ट्रक चलाया।
हाँ बोली कि अभी आपको लाइसेंस मैं दूंगी नहीं। तो उस समय एक ट्रक आया था, अपना ज्ञान सर्वर बन रहा था, मिनी ट्रक था, तो हम चलाते थे, लाइसेंस तो था नहीं, अब नया नया गाड़ी। अब मैंने नागराज बोला कि नहीं आपको ही चलाना है, क्योंकि दूसरी बात क्या है नीचे से पत्थर ढो करके ज्ञान सर्वर बन रहा था सारा पत्थर उसर लाद करके उसमें ले आते थे। तो बोले आपको ही चलाना है गाड़ी। फिर हमने कहा अभी दादी से मेरे को परमिशन दिला दो, छुट्टी दिला दो। तो नहीं दादी से तो आप साइड में चलाओ ना। कहा ठीक है, लाइसेंस तो है नहीं, चला रहा हूँ, बाबा कर रहा है, बाबा बैठा हुआ है। अभी एक बार की बात है, लाइसेंस तो था नहीं, लेकिन हमने कहा कि चलिए। मैं उदयपुर गया था तो पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ लिया, बोला भाई लाइसेंस दिखाओ, क्योंकि रॉन्ग साइड आ गया। मैंने कहा कि भाई लाइसेंस तो है नहीं, उसको नहीं बोला कि है नहीं, ऐसे नहीं बोला। हमने कहा लाइसेंस हमारे गाड़ी में है भाई साहब, हम ओम शांति वाले लोग हैं। हमने कहा बाबा रक्षा करना। तो कहा कि हमने कहा भाई साहब हमारे पास, फटाफट गया वो ड्राइव, हमारे पास में जो खलासी था वो टोली ऐसे उसको दे करके आया था, तो आधा टोली उसको वो जो खा रहा था उसके बाजू में जो रखा हुआ था टोली वो मैं लेकर के आ गया। हमने कहा भाई ये टोली मेरे को दे दो। तो बोला क्यों? हमने कहा पुलिस वालों को देना है। और पुलिस वालों को इतना छोटा सा टोली दिया तो बोलता है कि आप ये भी गाड़ी ये भी ले जाओ और आप जाओ, मेरे को टोली आपका नहीं चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आया, फिर नागराज भाई ने दादी को बोल करके हमारी लाइसेंस दिलवाया नागराज भाई। तो वो भी लाइसेंस के लिए, दादी बोली नहीं मैं तो लाइसेंस दे दी। हमने कहा नहीं दादी जी मिला नहीं है, ऐसा ऐसा है। तो यीशु दादी उस लाइसेंस को इतनी संभाल करके रखी थी जैसे बहुत बड़ी अमानत हो। समझ में? उसी दादी को 3 दिन वो लाइसेंस खोजने में लगा। तो लाइसेंस दी और उस समय से हमने गाड़ी चलाने लगा।
अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका कभी भटकती आत्माओं से पाला पड़ा, वास्ता पड़ा?
हाँ, एक बार तो लौकिक में हमको पकड़ लिया था। तो खेत में खाद डालने के लिए जा रहे थे बैलगाड़ी में, तो जो खजूर का पेड़ था वहां पर वही बिल शोर रहता था। तो हमने बैल को एक साटा मारा और बैल को गाली दिया, तो वो इविल सोल मुझे को पकड़ लिया। और जब हमारे जीजा जी हमारे साथ में थे तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो इसका सिस्टम कुछ गलत लग रहा है। खेत में खाद डाला इतना मेरे को मालूम है, और खाद डालने के बाद मैं गाड़ी में जब बैठा वो इतना मुझे मालूम नहीं। फिर आते आते बहुत मेरा दुर्दशा हो गया। फिर हमारा जान पहचान के वहां पर लोग थे तो उन्होंने आकर के मिर्ची फिर्ची का धुआं हुआ मारा, तो जाकर के ठीक हुआ। फिर एक बार यहाँ नकी लेक पर पकड़ लिया था, 2 आत्माएं एक साथ पकड़ लिया गया, एक बच्ची थी और एक बूढ़ा। वो बार बार मेरे को सपने में दिखाई देता था और बहुत मेरे को कष्ट देता था। माना एक बच्ची इतनी छोटी छोटी बच्ची थी और ऐसे ठेला पकड़ी हुई है, और उसका बूढ़ा बाप था वो दिखाई दे रहा था। तो वो मेरे को तंग किया लगभग 2-3 महीना। फिर मैंने किसी से दिखाया तो ठीक हुआ।
और बहुत सारी बातें आपके पास, आपको कोई अपने याद आ रही है कोई
याद? एक बहुत सुंदर बात आपको बताना चाहूंगा। हमको ब्रह्मा बाबा का मैंने पूरा, मैं क्लियर ही ब्रह्मा बाबा को देखा हूँ, ऐसे मुझे बार बार अनुभव हुआ। पहले तो शिव बाबा का हुआ था कलकत्ता में। तीसरी बात बताना चाहूंगा कि जब हम कलकत्ता में आसाम में भाई के साथ कारोबार करने गए थे तो मेरे को ब्रह्मा बाबा सपने में बार बार दिखाई देता था। बाबा बोलता था नहीं बच्चे चलो आपको सेवा करनी है। पर इतना बाबा का आवाज आता था आपको सेवा करनी है चलो। तो मैं बार बार 2-3 बार भाई के साथ में छोड़ करके आया। और तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक बार 2009 में हमको यहाँ से केरला जाना था। बनारसी भाई ने मेरे को बोला योगी भाई आपको केरला जाना है और 14 तारीख को 15 तारीख को वहाँ आपका प्रोग्राम है। तो मैंने कहा कि ठीक है।
तो मैं तैयार होकर के 12 तारीख को यहाँ से मैं केरला के लिए रवाना हुआ। तो मैं शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकता, छोटी मुंह बड़ी बात मैं क्या बोलूँ आप। पच्चीस सौ किलोमीटर गाड़ी चलाया हमने, अरे कंटिन्यू दो रात जाग कर। फिर उसके बाद वहां जब केरला पहुंचा लगभग 3:30 बजे रात को, 14 तारीख को, अब बनारसी भाई को मैंने फोन किया, भाई साहब मैं आ गया। बनारसी भाई बोला आ गए, कैसे आए? क्योंकि 2500 किलोमीटर अकेला ड्राइविंग करना, मैंने 2 रात कंटिन्यू जागा। तो जाग करके वहां पहुंचा तो पूरा शरीर हमारा अकड़ गया, माना टाइट हो गया। फिर हमने बाबा फिर बाबा आए और ऊपर से लेकर के पांव तक मालिश किया था, फिर थकावट खत्म हो गया।
मतलब बाबा ने आपकी पूरी मालिश कर दी, जरा सारी थकावट खत्म हो गई।
देवेंद्र भाई,
आदरणीय योगी भाई जी, हम सभी के बीच पधारे और अपने वैरायटी अनुभवों से हम सभी को सराबोर किया। बाबा के साथ के अनुभव हम सभी ने उनके प्रैक्टिकल जीवन से अभी अभी देखा, अनुभव किया। और आपने जो हमें विशेष बात बताई कि बड़ों की जो भी आज्ञा होती है उसमें हम हाजी करते हैं, तो उससे हमें हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इसलिए हमें हर बात में हाजी का पाठ अवश्य ही पक्का करना है। तो हम आदरणीय योगी भाई जी को यहाँ पधारने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।